शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। आपको याद होगा कि ये जो पूरी श्रृंखला हमारी चल रही है, इसमें हमने अपनी पहचान की, परमात्मा की पहचान की, समय चक्र को समझा और जीवन के जो वो एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें हम मानते हैं कि विकारों से उत्पन्न हो रहा है, चाहे वो क्रोध की बात थी, चाहे वो डिप्रेशन की बात थी, चाहे वो स्ट्रेस की बात थी, उन्हें भी अपने जीवन के इस पहलू को लेकर हमने प्रोग्राम में बात की है। लेकिन इन्हीं बातों से जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपके मन में उठी और आपके सवालों को लेकर आज हम फिर इस कड़ी में आपके सामने हैं और आप ही के सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ एक बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमारी बहन शीलू बहन, जो खास माउंट आबू से आई हैं आप ही से बात करने के लिए। और अगर आपको याद हो, इनके साथ हमने शुरुआत की थी अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी की। शीलू बहन, आपका आज फिर बहुत स्वागत। ओम शांति।
ओम शांति।
अगर हम देखें शीलू बहन, तो हमने जब आत्मा की सही पहचान को लेकर, अपनी सही पहचान को लेकर खुद को पहचाना कि मैं एक आत्मा हूं, फिर हमने ये भी बातें कर ली हैं कि जो जो सवाल लोगों के मन में आते गए कि अगर मैं एक परफेक्ट, प्योर और कंप्लीट आत्मा हूं, तो फिर मुझे वो मैं गलतियां क्यों करता जाता हूं या क्यों सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर आपने बताया कि वो एक प्रोसेस है, वही पुरुषार्थ है, उसे इमर्ज करने की जरूरत है। आज फिर कुछ ऐसे ही सवालों को लेकर शुरुआत करते हैं। अमित वाराणसी से है, उन्होंने भेजा है हमें एक सवाल कि आई वॉन्ट टू आस्क इफ सोल कैन नॉट एक्सेप्ट नेगेटिव एनर्जी देन हाउ कैन ही एक्सेप्ट पॉजिटिव एनर्जी। उनका कहना यह है कि जब कोई हमें, क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि जब कोई हमें अब्यूज करता है या हमारे साथ गलत बात कर रहा है तो वो हमें नहीं कर रहा होता, और अगर कोई फिर कोई अगर हमें विश करता है तो फिर वो भी हमें नहीं कर रहा होगा। सो अगर हम नेगेटिव एनर्जी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मैं आई द सोल, तो मैं पॉजिटिव कैसे कर सकती हूँ?
नहीं, यही बात है कि आत्मा दोनों एनर्जीज एक्सेप्ट कर सकती है, पॉजिटिव भी कर सकती है तो नेगेटिव भी कर सकती है, क्योंकि जैसे बताया ना कि मन इन्फ्लुएंस हो जाता है।
परवश की बात की,
परवश की बात कही थी, तो क्यों नहीं नेगेटिव एनर्जी हम एक्सेप्ट करते हैं? तो हम कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी को एक्सेप्ट न करें। जैसे देखिए, एक दुश्मन वार करता है, पर हमारे पास अपने डिफेंस के वेपन्स हैं, साधन है, तो उस वार को हम नहीं माना अनुभव करेंगे। इसी प्रकार नेगेटिव को हम न एक्सेप्ट करें, केवल पॉजिटिव को एक्सेप्ट करें, उसके लिए बुद्धि काम करेगी। बुद्धि वो निर्णय शक्ति है जिसके आधार से वो निर्णय करेगी कि क्या एक्सेप्ट करे क्या न करे।
बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने बात की अमित। और जहां तक बात ये, मुझे भी याद है कि जब हमने बात ये कही थी कि जब हमारे साथ कोई बुरा कर रहा होता है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, हमने ये कहा था कि हमारे पास वो क्षमता है, वी हैव द पावर टू ईदर एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट, सो वी कैन एक्चुअली रिजेक्ट इट एनी टाइम। अगर वो नेगेटिव एनर्जी हमारे पास आ रही है, हम उसे रिजेक्ट करते हैं।
हाँ, बुद्धि की शक्ति को हम कहेंगे जिससे फिल्टर होता है ना। अब चाय हम छानते हैं तो जो चाय पत्ती है वो ऊपर रह जाती है और चाय कप में आ जाती है, तो बुद्धि वो फिल्टर का काम करती है जिसमें नेगेटिव एनर्जी एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि आत्मा को ये महसूस तो होती कि मैं तो वो शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, तो आत्मा अपने स्वमान में रहती है तो नेगेटिव को एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन अगर स्वमान में नहीं है, वो भूल गई अपने आप को, तो नेगेटिव को एक्सेप्ट कर लेती है, इसने मुझे दुख दिया, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो फिर दूसरे के प्रति नफरत भी आएगी, अवेयर भी आएगा, घृणा भी आएगी, सब बातें आएगी,
गुस्सा आएगा कि मेरे साथ गलत हुआ। तो हमने बात ये की थी कि मेरे साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता।
नहीं, जो कुछ हो रहा है, क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन मैं उस गलत को उस रूप से एक्सेप्ट ना करूं। मानो कि क्रोध अगर मुझ पर कोई करता है, मैं उस क्रोध को एक्सेप्ट ना करूं ना, मेरी ग्लानी करेगा उस क्रोध में, तुमने ये किया तुमने ये किया, तो दुख देने की कोशिश करे, पर मैं उस दुख को एक्सेप्ट ना करूं, वो मेरी चॉइस है। तो मैं अपने अगर स्वमान में स्थित हूं तो मैं उस दुख को एक्सेप्ट नहीं करूं।
इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस एक्चुअली, वी ऑलवेज टॉक्ड अबाउट दैट बॉल इज इन आवर कोर्ट एक्चुअली। अगर हम डिसीजन लेते हैं, और हमने हर बार ये कहा है कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार भी हम ही होते हैं, तो अगर हमारे पास कोई भी हमारे साथ गलत कर रहा है, हम उसे स्वीकारते हैं, वो हमारे पर डिपेंड करेगा।
हम इसमें दो बातें बताते, एक है कि किसने मुझे दुख दिया, हम उसे एक्सेप्ट न करें। दूसरा है कि कई इस प्रकार की शिकायत करते हैं कि हम किसी को कभी दुख नहीं देते, पर वो महसूस करता है। नहीं, वो महसूस करता है कि मैं उसे दुख दे रहा हूँ।
हाँ, मेरी कोई इंटेंशन नहीं होती,
मेरी इंटेंशन नहीं है ना, मैं कभी दुख दे रहा, पर वो यही समझता है कि मैं उसे दुख दे रहा हूँ। अब वास्तव में वो ऐसे क्यों समझ रहा है, ये उसकी कमजोरी है, उसके अंदर कोई अनुमान है, वहम है, शक है, वो उसकी कमजोरी के कारण वो ऐसे सोच रहा है कि मैं उसे दुख दे रहा हूँ। तो ऐसे व्यक्ति पर मेरी गुड विशेस है कि वो अपने विचारों को बदल दे, क्योंकि मेरे अंदर कोई इंटेंशंस नहीं।
लेकिन शिरुबेन यहाँ एक और बात भी बहुत सूक्ष्म स्तर पर अगर हम जाएं, सटली अगर हम देखें, तो क्या मैं सच, अगर वो महसूस कर रहा है कि मैं उसके साथ कुछ उसको दुख दे रहा हूँ, क्या सूक्ष्म स्तर पर सटली कभी कभी मुझे खुद भी नहीं पता चल रहा होता कि मैं उसको दुख दे रहा हूँ या नहीं?
हाँ, फिर उसमें मैं अपने आप को चेक करूँ कि मेरे विचार कैसे चल रहे हैं। अगर मेरे विचार पॉजिटिव है और शुभ चिंतक की भावना है, तो फिर मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए कि क्यों मैंने तो कुछ नहीं किया, क्यों ऐसे समझता है। उस समय उस पर दया आती है कि ये बेचारा नहीं समझता है, मेरे अंदर नहीं कोई गलत भावना है, तो मैं न्यारी प्यारी हो जाऊं और गुड विशेज उसको दूं। उसके अपने भी तो हिसाब किताब है ना, अपने भी तो कर्म के खाते हैं, इस कारण से वो अपने आप को दुख दे रहा है या महसूस कर रहा है, तो मैं उनसे न्यारा हो जाऊं विद माय गुड विशेस।
बिल्कुल, और वो गुड विशेस कायम रखूं, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें गुस्सा चढ़ जाता है, हम हर्ट हो जाते हैं कि मैं तो कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, क्यों समझ रहे हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ।
अब यही मेरी गलती है कि मैं, मुझे गुस्सा आ जाता है, ये क्यों ऐसे समझता। अब वहां गुस्सा करना भी अपने लिए, अपने अंदर भी ये भी गलत हो जाता है, उसके प्रति तो नहीं कर रहे पर अपने अंदर भी गुस्सा आ जाए अपने लिए, वो भी गलत।
समवेयर ये वही बात है कि बार बार अपने आप को चेक डीपली। कई बार हमने देखा, हमने एक बार ब्रजमोहन भाई के साथ जब बात कर रहे थे, उन्होंने हमें ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि बुद्धि भी कई बार जो है वो इतना हमारे सामने वो करती जाती है कि हम उसके जाल में भी फंसते जाते हैं। सो देन ही सेड कि फिर अल्टीमेटली वही है कि क्योंकि लॉजिक बहुत देती जाती है और हम उसकी बात को मानते चले जाते हैं, फिर तो फिर तभी परमात्मा के साथ की उनकी वो गाइडेंस, एक गाइडिंग फोर्स जो है ना, बार बार हमें बताती जाए कि नहीं ये सही है ये गलत है। सो यहाँ ये हमें अपने आप को, इसीलिए क्योंकि हम इस स्टेज पे पहुंचे हुए हैं, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल।
या उस समय हमें निष्पक्ष होना पड़ेगा बिल्कुल इम्पार्शियल रूप से, न्यारी और प्यारी स्थिति में, तब निर्णय सही होगा। अगर हम थोड़ा भी किसी के प्रभाव में हैं तो निर्णय सही नहीं होगा।
यही तो, वो निर्णय शक्ति भी तो इतनी क्षीण हो चुकी है,
इसीलिए कहा ना परमात्मा से ही संबंध चाहिए, तब बुद्धि सही निर्णय देगी।
बिल्कुल, तो हम अपनी बुद्धि के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड ना करें, क्योंकि कई बार वो भी हमें बहुत धोखे दे जाती है।
क्योंकि बुद्धि फिर मन के प्रभाव में आ जाती है, या बुद्धि संस्कारों के प्रभाव में आ जाती है, इसलिए जो सद्बुद्धि हम कहते वो नहीं रहती है। सद्बुद्धि तब कहे हम जब परमात्मा से हमारा बुद्धि योग हो, बुद्धि परमात्मा के साथ जुड़ी हुई हो। मन तो है ही, पर बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ हो मन, क्योंकि बुद्धि निर्णय करेगी। वो फेथ केवल ब्लाइंड फेथ नहीं होगा, पर समझ के साथ फेथ होगा, लॉजिकल।
बिल्कुल, तो अमित जी उम्मीद करते हैं कि आपके सामने ये बात जरूर क्लियर हुई होगी कि कोई अगर हमारे साथ गलत हमें लगता है कि कर रहा है, तो बेसिकली इट्स आर डिसीजन वेदर वी वॉन्ट टू टेक इट और नॉट। एक और यहाँ पे मैं लेना चाहती हूँ, पद्मा तेतिया का जी का है कि प्लीज डिफाइन द रोल एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सोल माइंड। अब माइंड और हार्ट को बहुत लोग जोड़ते हैं, दिल या मन क्या है, और दिल मतलब वो फिजिकल एंटिटी या वो दिल जो कभी समझ में नहीं आता कि दिल है कि मानता नहीं वाली बातें भी होती हैं। सो रोल एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सोल माइंड ब्रेन एंड बॉडी इन आर थॉट्स डिसीजन मेकिंग एंड ऑल आर एक्शंस।
अब क्या है, मन और दिल इनको मिला दिया है, और बुद्धि और दिमाग इनको मिला दिया है। तो जिस प्रकार आत्मा के अंदर मन और बुद्धि है, तो उसी प्रकार शरीर का दिल और दिमाग है। अब हम कहते हैं कि मन में परमात्मा को याद करो, अब उसको अगर फिजिकली लेंगे तो दिल में भगवान को बसाओ। तो दिल में परमात्मा को बसाना माना मन से परमात्मा को याद करना, या मन में परमात्मा को स्थान देना।
तो वो दिल जो हार्ट है, जो एक जो बीट करता है, वो तो एक फिजिकल एंटिटी है।
ये हृदय जिसको हम कहते हैं, वो तो एक फिजिकल चीज है। तो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पंप, यू नो, वेरी पावरफुल पंप। देखिए, जैसे ही दिल धड़कना शुरू होता, कहेंगे जीवन आया। और जिस समय दिल धड़कना बंद हो जाए, मनो जीवन समाप्त हुआ। तो ये तो शरीर की चीज है, परंतु जब हम आत्मा के मन की बात करते हैं तो हमारी सोच शक्ति है, हार्ट में कोई सोच शक्ति नहीं है, वो तो केवल
वही इनफैक्ट वो अगर हम देखें तो वो जो बॉडी का जो मैकेनिज्म है उसका स्विच ऑन है, जो फिजिकल बॉडी है हमारा उसका जो पूरा मैकेनिज्म अगर हम देखते हैं शिलुबेन, उसका स्विच ऑन अगर हो गया मतलब हार्ट का फंक्शन शुरू हो गया, और वो अगर स्विच ऑफ हो गया हार्ट तो वो मैकेनिज्म बंद हो गया,
मैकेनिज्म बंद हो गया।
तो यहाँ ये जो कंफ्यूजन रहती है, हम हमेशा दिल की फोटो वैसी बना लेते हैं और यही मानते हैं कि वही इमोशंस होती हैं, वही सब कुछ है, तो यहाँ लोगों को ये कन्फ्यूजन।
हाँ, तो क्या मन का कनेक्शन दिल के साथ क्यों नहीं है? हम जैसे सोचते हैं उसका प्रभाव दिल पर पड़ता तो क्यों नहीं?
फिजिकल एंटिटी
बिल्कुल पड़ता है, तो वो तो फिजिकल और मेंटल का तो प्रभाव है ही है। और फिर जो दूसरा कहते हैं बुद्धि और दिमाग, तो बुद्धि से काम लो, दिमाग से काम लो। अब यहाँ दिमाग को जब हम कंपेयर करेंगे तो इट इज लाइक द यू नो द मेमोरी और द यू नो जो ब्रेन, जो हम कंप्यूटर की बात करते हैं, लेकिन बुद्धि उस रूप से नहीं है। बुद्धि तो समझती है ये गलत है या सही है, ब्रेन तो केवल एक मेमोरी में रखता है,
अगेन वही फंक्शन करने के लिए वो आगे देता है। यू नो अगर हम और भी क्लैरिफाई कर लें कि अगर निर्णय ले लिया बुद्धि ने, सो देन इट सेंड्स अ मैसेज टू
स्टिमुलस या
ब्रेन को, तो फिर ब्रेन बाकी की हाथ से मुझे कप उठाना है या नहीं उठाना।
जी जी बिल्कुल, इसीलिए मन और बुद्धि या आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं और हृदय या दिल और दिमाग ये शरीर की स्थूल शक्तियां हैं,
और उन दोनों का कॉम्बिनेशन है,
बिल्कुल
रिलेशनशिप है।
हृदय का असर दिमाग पर पड़ता, दिमाग का असर हृदय पर पड़ता, जैसे मन का बुद्धि पर, बुद्धि का मन पर। अब ये जो संस्कार है वो ही एक्शन को प्रभावित करते हैं, तो हमारी शरीर की कर्म इंद्रियां ये संस्कार का रूप हो गया, फिजिकल फॉर्म, जैसे देखिए हाथ चलते हैं, कई किसी की बॉडी लैंग्वेज होती है, पर है वो आत्मा के संस्कार, वो फिजिकली वो हाथ और पैरों के द्वारा मैनिफेस्ट होते हैं उस हिसाब से।
बिल्कुल। अच्छा एक और सवाल है यहाँ पे सुकुमारन जी का, वेदर द इंटेलेक्ट नॉलेज कॉन्शियसनेस विच वी गेन थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस विल रिमेन विद सोल फॉर एवर और विल गो आफ्टर दिस बर्थ व्हेन डेथ कम्स। ये इनका सवाल है कि जो स्पिरिचुअल पावर, जो नॉलेज, जो इंटेलेक्ट हमने आज या कॉन्शियसनेस हमने आज सपोज आज के इस वक्त में हमने यहां तक गेन कर लिया, तो आज अगर मैं शरीर छोड़ दूं तो क्या
इट गोज विथ द संस्कार? अब वो उसी रूप में नहीं होगा, जैसे देखिए एक बच्चा पढ़ाई करता है, डिग्री हासिल कर लेता है या कोई भी बड़ा पद पा लेता है, अब वो उसके अंदर ज्ञान बहुत आ गया, अब समझो उसने शरीर छोड़ा तो वो ज्ञान कोई सारा अगले जन्म में नहीं जाएगा, पर वो संस्कार जरूर जाएंगे। संस्कार जाएंगे, फिर उसी संस्कार से फिर वैसा ही कर्म शुरू होगा, फिर ज्ञान तो अर्जित करेगा, वो ज्ञान के तो आकर्षण जाएगा।
बिल्कुल। और इनफैक्ट अगर स्पिरिचुअल उसकी बात करते हैं, इफ आई टेक माय ओन एग्जांपल, बहुत सारे लोगों के साथ ये हो रहा है कि हमने पिछले जन्म में या किसी ने भी, हमने जो भी स्पिरिचुअल जर्नी की होती है सबकॉन्शियस माइंड में कहीं होता है। इफ आई लुक एट माई सेल्फ ऑल्सो शिलुबेन, मुझे नहीं लगता था कि मैं कहीं स्पिरिचुअल हूं, लेकिन जैसे ही आप धीरे धीरे ज्ञान करते जाते हो आपको एहसास हो जाता है कि स्पिरिचुअल इज नॉट अबाउट यू नो कि आपको आप रिलीजियस हो जाते हो, स्पिरिचुअल इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ। तो ये कॉन्शियसनेस तो ये तो रहती है, सबकॉन्शियस में कहीं चली जाती है।
हाँ बिल्कुल, हम इसमें कई एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। अभी जैसे कोई व्यक्ति मिलिट्री में है और उसके अंदर वो इतनी एंथुसियाज्म है कि मैं इन्हें बंदूक चलाऊं, ये करूं, और वो बहुत सफल होता है उसमें। अब समझो वो शरीर छोड़ता है, अगले जन्म में उसके अंदर ये फिर से संस्कार जागेगा कि मैं बंदूक उठाऊं, मैं मिलिट्री में जाऊं, माँ बाप रोकेंगे, अभी नहीं बेटा, तुमको तुम इकलौता बेटा, नहीं मुझे तो मिलिट्री में ही जाना है। कई बचपन से जैसे सन्यासी के संस्कार, हो सकता है पूर्व जन्म में वो सन्यासी हो, अब नया जन्म लिया तो सन्यासी के संस्कार आ गए, फिर उसे शिक्षा तो लेनी होगी, दीक्षा तो लेनी होगी दोबारा, पर संस्कार में तो वो समाये गया।
तो वो एटीट्यूड जो है वो उस तरफ जा सकता है, और जो राइट टाइम पे भी कई बार कहते हैं कि इमर्ज होती है।
बिल्कुल बिल्कुल।
तो वो संस्कार राइट टाइम पे कब इमर्ज हो जाएगा
जी? वो अब जैसे कई बार हम देखते हैं, हम एक माता पिता पर दो प्रकार के बच्चे, एक बच्चा बहुत रोता है, बहुत गुस्सा वाला, दूसरा इतना शांत, अब वो शांति का संस्कार या गुस्से का संस्कार माँ बाप ने थोड़ी दिया, वो पूर्व जन्म से वो आत्मा लेकर आई, परंतु अगर उस अच्छे माहौल में रहे तो बदल भी जाता है, और एक अच्छा भी बुरे माहौल में रहे फिर वो बुराई उसमें आ जाती है, बदल जाता है, ऐसे भी होता है।
एक और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, इनफैक्ट ये इस सवाल का जवाब जो हमें मिला वो यही कि जो भी स्पिरिचुअल जर्नी हमने की होती है, जो भी संस्कार हमारे बन चुके हैं, एक्चुअली कैरी फॉरवर्ड होते हैं, लेकिन वो उसका भाव रहता है, अगर वही प्योर पूरी रिमेम्बरेंस में नहीं रहता, भाव रहता है सबकॉन्शियस माइंड में, और राइट टाइम पे वो जरूर इमर्ज होता है।
देखिए संस्कार भी हम कई प्रकार के बताते हैं। एक संस्कार वो है जो ओरिजिनल है, जो बताए वो तो है ही। दूसरे संस्कार हैं जो हम वातावरण से लेते हैं, वो भी है। तीसरे हैं जो माता पिता से मिलते हैं, वो भी है। चौथे हैं जो हम क्रिएट करते हैं, वो भी है। और पांचवें प्रकार के भी संस्कार है जो हम विल पावर के आधार से अनुभव करते हैं, वो भी है। लेकिन फिर वही बात आती है, जो ओरिजिनल मेरे संस्कार हैं वो तो शुद्ध और पवित्र संस्कार।
और वो सात संस्कारों की हम जो बात करते हैं, प्योरिटी से जुड़े हुए, चाहे वो नॉलेज है, एक बार हम फिर रिवाइव कर लेते हैं।
तो वो सात मूल संस्कार माना सात मूल गुण जिनका आत्मा स्वरूप है। पहला है ज्ञान स्वरूप। ज्ञान बाहर से नहीं आता है, जो बाहर से आता है वो सूचना इन्फॉर्मेशन, यू नो, अंदर से जो आता है वो है ज्ञान। विवेकानंद ने एक बहुत सुंदर बात कही, व्हाट इज एजुकेशन और व्हाट इज इवन मेडिटेशन। एजुकेशन और मेडिटेशन दे गो लाइक टुगेदर, कि एजुकेशन इज एक्चुअली द परफेक्शन, द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन विद इन। एजुकर टू ड्रॉ आउट, so what you draw in or take in is information, and what comes out after that is the real education, that is the real meditation, where you go within and reveal your true form. So this is how we understand as gyan. Jaise dekho chote bacche ko jhooth bolna sikhaya jata hai, sach bolna nahi sikhaya jata, sach to bolta hi
hai, uska mool sanskar hai, bilkul hai।
To atma to apne mool swabhav mein to hai hi gyan swarup na। तो इसीलिए ज्ञान है पहला गुण आत्मा का। फिर उस ज्ञान से आती है पवित्रता। क्योंकि जब हमें ये ज्ञान मिला कि मैं कौन हूँ, तो पवित्र संस्कार इमर्ज होते हैं, और इस पवित्रता से अनुभव होती है शांति। क्योंकि पवित्र विचार ही शांति का अनुभव कराएंगे। हम कहते हैं पवित्रता शांति की जननी है, इट क्रिएट्स पीस। So you can't experience peace without pure thoughts.
Very true.
तो इसलिए purity से peace, फिर peace से love। जब अंदर में peace है तो सब के लिए love है, जिसको हम आत्मिक प्रेम कहते हैं। और जहाँ प्रेम है वहीं पर सच्चा सुख है, सुख जिसको आत्मिक सुख कहते हैं। और जहाँ सुख है उसी का चरम स्वरूप है आनंद,
ब्लिस जिसे कहते
हैं, ब्लिस। और आप देखिए जितने भी संत महात्माएं, गुरु स्वामी लोग हैं, उन सबके नाम के अंत में आनंद आता है। सच्चिदानंद स्वामी, सत्यानंद स्वामी, शांतानंद, प्रेमानंद, धर्मानंद, विवेकानंद, आनंद। सो आनंद इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटरनल हैप्पीनेस,
द स्टेट ऑफ द बीइंग।
और सबसे ऊंचा आनंद है परमानंद। परमानंद यानी परमात्मा के साथ मिलन का आनंद। और वो अगर आनंद अनुभव किया तो बाकी सब कुछ जो भी जिसको हम आनंद समझते आए ना, वो फीका लगेगा। आज इंद्रियों के आनंद को मनुष्य आनंद समझता है, कोई चटपटी चीज खा ली, वाह वाह बड़ा आनंद आ गया। तो इंद्रियों का जो अल्पकाल का सुख है उसे आनंद समझ लिया है। एक्चुअली द ट्रू ब्लिस कम्स फ्रॉम द सोल, एंड द हाईएस्ट ब्लिस इज व्हेन इट्स कनेक्टेड टू गॉड द सुप्रीम। और उसी का ही फिर स्वरूप है शक्ति, जिसको हम विल पावर कहते हैं। तो ये सारे गुण अगर अंदर में अनुभव हुए तो आत्मा को शक्ति आएगी।
बिल्कुल, बहुत सुंदर बात आज हमने समझी है कि अगर हम रियलाइज करें कि कहां से क्यों किस तरह से मैनिफेस्टेशन होता जाता है, कौन कौन सी ऐसी पड़ाव है, कौन कौन सी ऐसी सीढ़ियां हैं जो हम चढ़ते जाएं, तो इन संस्कारों को हम दोबारा इमर्ज कर सकते हैं, हम स्मृति में रह सकते हैं इनके, और वहीं से वो सारे अनुभवों की शुरुआत होती है। और संस्कार भी हम देखें अगर, तो संस्कार भी बनता तभी है जब वो अनुभव हो जाता है, तभी वो संस्कार के रूप में भी आता है। शिलू बहन, एक और सवाल मैं यहाँ लेना चाहती हूँ, इनका है, At the time of death, when spirit leaves the body or the soul, atma leaves the body, where does it go and after how much time interval it gets the next birth? एक और साथ ही जुड़ा एक और सवाल भी है कि जो अगला जन्म लेती है क्या वो उसके कर्मों पर डिपेंड करता है या ऑलमाइटी डिपेंड डिसाइड करते हैं. और एक और जो इनका सवाल ये है कि कई बार कई जगह ये लिखा हुआ है कि सोल ही खुद तय करती है कि मुझे किस घर में किस पेरेंट्स के पास जाना है.
अब ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बड़ा गहरा प्रश्न है. तो शिव बाबा ने हम बच्चों को बहुत सरल रूप से ये बात समझाई है कि वास्तव में आत्मा जैसे एक शरीर छोड़ती है तो नॉर्मल रीति से उसको तुरंत दूसरा शरीर चाहिए. तो जैसे एक गर्भ में 4.5 महीने का गर्भ तैयार होता है तो आत्मा तुरंत जाकर के प्रवेश करती है, क्योंकि शरीर जैसे मकान की तरह है. अब मकान ही नहीं होगा तो कहाँ रहेंगे, इसलिए एक मकान से निकले तो दूसरा मकान तैयार चाहिए. जैसे हम अपना मकान बनाते हैं, नया मकान, तो कब उसमें प्रवेश करेंगे, पहले तैयार हो जाए फिर उसमें प्रवेश करेंगे, फिर पुराने को तोड़ेंगे. ऐसे तो नहीं निकल जाएंगे, फिर भटकते रहेंगे. तो ये नॉर्मल प्रोसीजर है कि आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा तुरंत लेती है. लेकिन कई बार क्या होता है, तुरंत शरीर नहीं मिलता और वो आत्मा भटकती है. अब भटकने का कारण भी है, कई समझते हैं शायद एक्सीडेंट अगर में किसकी मृत्यु हुई या सुसाइड किया या मर्डर हुआ तो वो आत्मा भटकती है. एक्चुअली दैट इज नॉट द क्राइटेरिया. भटकने का कारण एक्सीडेंट, मर्डर या सुसाइड नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है. भटकने का कारण है उसकी अंतर की वृत्तियां. जिस समय वो शरीर छोड़ता है उसके अंदर कई आसक्तियां हैं, नफरत की भावना है, वैर की भावना है, दुश्मनी की भावना है, ये सब उसमें है. तो जिसके साथ वो कर्म का हिसाब किताब होगा ना, उसको जाकर के उनसे उसकी में भी प्रवेश हो सकता है, किसी और में भी प्रवेश हो सकता है और उसके साथ कर्म का हिसाब किताब होगा. और जब तक वो हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ तब तक वो आत्मा को अपना शरीर नहीं मिलेगा, वो भटकेगी आत्मा, जिसको हम कहते हैं भटकती हुई आत्माएं.
नहीं तो इसका मतलब वही हुआ कि जो कार्मिक जो कर्म है वही तय करते हैं कि हमें बर्थ में. तो इसका मतलब अभी भी कुछ ऐसा है कि बहुत से लोग या बहुत सी आत्माएं जो हैं वो अभी भी शरीर में नहीं है.
बिल्कुल है.
तो वो कहाँ है फिर? वो
यही है, वही यही जिसी को का एस्ट्रल बॉडी लेती है और वो भटकती, उनको अपना शरीर नहीं है. कईयों को जैसे दिखाई देता है एक जैसे कोई एस्ट्रल बॉडी उनके सामने आई, तो ये कोई गलत बात नहीं है, ये सही बात है, उनको तुरंत शरीर नहीं मिलता है.
इसका मतलब ये हुआ कि जो आत्मा शरीर में नहीं है वो कमजोर होनी चाहिए, तो लेकिन वो पोजेस कैसे कर सकती?
नहीं नहीं, नहीं, नहीं वो कमजोर है पर नेगेटिव शक्ति बहुत है. एक देखो, एक है पॉजिटिव शक्ति, एक है नेगेटिव शक्ति. रावण की भी तो शक्ति दिखाते हैं ना, कंस की शक्ति दिखाते हैं, राक्षसों की शक्ति दिखाते हैं, तो वो भी कोई शक्ति नेगेटिव फोर्स है ना. तो नेगेटिव शक्ति को तो खत्म होना है और पॉजिटिव शक्ति को आगे आना है, तो इसलिए वो नेगेटिव शक्ति अपना काम करेगी ना. जब तक वो धीरे 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 वो शक्ति कम होती होती खत्म हो जाएगी, फिर उस आत्मा को अपना चोला मिलेगा.
तो इसका मतलब वो जो तांत्रिक और वो सब कुछ जो है दैट रियली हैपेंस,
ये सब नेगेटिव शक्तियां है. कलयुगी दुनिया में तो ये बहुत कुछ है.
तो हाउ कैन वी प्रोटेक्ट, यू नो, यहाँ पर
इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सेल्फ वी से लर्न राजयोग. थ्रू राजयोग यू विल बी एबल टू मेक योर सेल्फ स्पिरिचुअली स्ट्रांग. और जब स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाते हैं तो ये नेगेटिव फोर्सेस अपना प्रभाव नहीं डाल सकते,
बिकॉज इट्स ऑल अबाउट फोर्सेस बेसिकली, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी. So when we are connected to the supreme soul every minute of our life,
yes,
you know, then there cannot be, because when we are charged, जब हम चार्जर के साथ जुड़े हुए हैं.
और दूसरी बात, जैसे एक प्रश्न किया है कि कौन निर्धारित करता है, वास्तव में कोई परमात्मा बैठकर एक एक आत्मा का निर्धारण नहीं करेगा कि कहाँ जाना है कहाँ जाना है. ये तो एक मैग्नेटिक पुल है, जिसके साथ कर्मों का हिसाब किताब होगा, आत्मा वहीं चली जाएगी. और कहाँ से जाती है इसका भी कारण है. और जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो मानो उस शरीर से उसका कर्मों का हिसाब किताब पूरा हुआ. जब तक कर्मों का हिसाब किताब पूरा नहीं होता तब तक शरीर भी नहीं छोड़ती। हमने कितनी आत्माओं को देखा, इतना कष्ट भोग रहे, इतना कष्ट भोग रहे हैं, तो भी आत्मा शरीर नहीं छोड़ती। और कईयों का तो जैसे मक्खन से बाल, इतना सहज रूप से जैसे शरीर छूटता है, हिसाब किताब सहज पूरा हो गया। तो ये भी सब कर्म की गति है। इसीलिए भगवान के महावाक्य की कर्म की गति बड़ी गहन है और साधारण इंसान इस कर्म की गति को समझ नहीं सकता है।
इसीलिए हमें परमात्मा के ज्ञान की जरूरत होती है, और जो हमें मुरली के रूप में हर रोज बाबा का वो ज्ञान मिलता रहता है। शीलू बहन, आज की इस पूरी बातचीत के लिए कई सारी ऐसी बातें सामने आई जो अभी तक क्लियर नहीं हो रही थी। थैंक यू सो मच। ओम शांति।
थैंक यू।
आज जो बात हमारे सामने आई वो यही कि अगर हम देखते हैं तो जब हमने बात की सोल की तीन शक्तियों की, तीन एस्पेक्ट्स की, उसमें मन, बुद्धि और संस्कारों को लिया था, तो मन और बुद्धि के कॉम्बिनेशन को, उसके रिश्ते को हम समझते हैं। दूसरी तरफ क्लैरिटी ये हुई कि हार्ट की जो बात है, दिल की बात है, वो एक फिजिकल एंटिटी है, हमारे शरीर का हिस्सा है, और ब्रेन भी एक वो फिजिकल एंटिटी है जो एक कंप्यूटर की तरह है। जैसे ही बुद्धि उन्हें कोई भी एक संदेश देती है या कुछ करने को कहती है तो वो आगे कर्मेंद्रियों को देते हैं और वहां से फिर काम शुरू होता है। सो मन बुद्धि का रिश्ता और दिमाग और दिल का रिश्ता, ये एक ऐसा रिश्ता है जिसे समझा जा सकता है और दोनों एक दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं। बाद हमने एक कई और भी बातें की हैं। उम्मीद करते हैं कि कई बातें आपके सामने जरूर आई होंगी। अभी भी कुछ सवाल हैं, कुछ ऐसी बातें जो आपको परेशान करती हैं या आप उनके जवाब तलाशना चाहते हैं, तो ब्रह्मा कुमारी इसके देश विदेश में फैले सेंटर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। अपने नजदीक के सेंटर के बारे में जानने के लिए या तो आप इन फोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं।
इफ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क और वांट टू नो योर नियरेस्ट राजयोगा मेडिटेशन सेंटर, यू कॉल अस ऑन 09999744555।
अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसका ये सफर आगे भी चलता रहेगा। बहुत सी बातें अभी करनी बाकी हैं, तो आपसे करेंगे फिर मुलाकात। आज विदा लेते हैं। ओम शांति।
ओम शांति।